यशोदानन्दन गजजनरञ्जन यशोदानन्दन ब्रजजनरञ्जन यमुनातीरा वनचारी यमुनातीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावद्भूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणधृता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते भक्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च परिदानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण। थोड़ा थोड़ा आप आगे आ जाइए, काफी दूर दूर बैठे हैं आप लोग। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने क्या चर्चा की थी? हाँ, ऊर्जा हवा पानी के बारे में चर्चा की थी। ओके, ये स्लो हो सकता है, इसका ये चालू करना, स्लो कर दो। ठीक है, और ठीक है, अगर भगवान के सामने नाचेंगे तो माया के सामने नाचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक बात है। गाने हम नचाएंगे आपको। ताली बजाने से पाप नष्ट हो जाते हैं। कैसे? ताली बजाने से पेट से पक्षी लेते हैं उड़ जाते हैं, तो हमारे इस शरीर रूपी पेड़ में पाप रूपी जो पक्षी हैं वो उड़ जाएंगे।
आप नाचेंगे नहीं और
खड़े
रहेंगे, सारे पक्षी दूसरों से
उड़ के ऊपर। हाँ, उड़ जाएंगे आपके ऊपर, फिर क्या करोगे? सारे पक्षी को दाना खिलाना पड़ेगा, पाप बढ़ेंगे ना। फिर बताया था निद्रा के बारे में, याद है? निद्रा देवी ने पूछा था कि मैं आपके भागवत में बैठने चाहती हूँ, कक्षा में बैठना चाहती हूँ, प्रवचन सुनना चाहती हूँ। तो बोले सुन नहीं सकती, निद्रा को अलाउड नहीं है। तो बोले उनके पर उनके पास चले जाना जो ध्यान पूर्वक नहीं सुनते हैं। तो जो ध्यान पूर्वक नहीं सुनते हैं उनके पास चले जाएंगे तो वो सोएंगे, इसलिए जो ध्यान से नहीं सुनते उनकी नींद आती है। कई लोग नींद आ रही है अभी भी, देख ध्यान पूर्वक नहीं सुनने से अपने आप नींद आती है ना। और एक और कारण है, आप देखना प्रवचन में और जप करने में आपको नींद आती है, महसूस किया? दोनों समय में एक ही चीज है, ध्यान पूर्वक नहीं करने से, और दूसरा हम जब करते हैं जप या सुनते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो तमोगुण भार रहता है और हमारे सर पर हावी हो जाता है, ठीक है? तो अगर आप ध्यान पूर्वक से जब करने लगेंगे या ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो तमोगुण बाहर हो जाएगा, समझ रहे बात? लेकिन अगर ध्यान पूर्वक नहीं जब करेंगे या आपका मतलब इच्छा नहीं उतनी कम हो रही है तो तमोगुण आप पर हावी हो जाएगा। वही जो तमोगुण आपके अंदर जो बाहर निकला तो सिर पर है, फिर आप जब जाएंगे तो लेकर जाएंगे फिर अंदर आ जाएगा, समझे बात? इसलिए भक्तों को क्या करना चाहिए, जप में और लेक्चर के समय ना पानी लेकर बैठना चाहिए। पानी जो है वो सत्वगुण का लक्षण है, तो जब आपको तमोगुण लगे, नींद आए या सिर्फ ध्यान भटके तो पानी पी लीजिए। पानी से सत्वगुण की वृद्धि होती है शरीर में, इसलिए स्नान करते हैं तो अच्छा लगता है, पानी पीते हैं तो अच्छा लगता है। कारण यही है, जैसे कोई व्यक्ति बहुत रो रहा है, कोई स्त्री पुरुष बच्चा बहुत रो रहा, रोने से तमोगुण बढ़ता है, तो तुरंत क्या करते हैं उसको एक गिलास पानी पिला देते हैं, शांत हो जाओ, मुंह धो लो, हाथ धो लो, पानी पी लो, ऐसे करने शांत हो जाता है एकदम उसके अंदर जो रजोगुण तमोगुण बढ़ गया था शांत हो जाता है। कोई व्यक्ति घबराए वैसा है, रजोगुण बढ़ जाता है, उसको पानी पिला देते हैं, सत्वगुण बढ़ जाता है, रजोगुण कम हो जाता है। हताश परेशान घबराए व्यक्ति को पहले बोलते हैं पी लो पानी, नींद से उठे हैं तमोगुण से हैं पानी पीते हैं सत्वगुण बढ़ जाता है। नींद में सब कोई सपना देखा भयंकर, घबराहट हुई, उठाते हैं पानी पिलाते हैं सत्वगुण आ जाता है, है ना? तो कई से उदाहरण है, सत्वगुण में रहने के लिए पानी पीना जरूरी है, ठीक है? और भगवान को प्रणाम करने से क्या होता है? अच्छा, मैं सोचा सुख संपत्ति कराता है, पाप नष्ट होता है, है ना? और किसका दड़वक का मतलब क्या है? क्या सुनने इतना नहीं दिया? हाँ, और हाँ नहीं तो क्या होगा? अगर ऐसा नहीं करते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं मंत्र बोल के नहीं पढ़ते तो क्या होता है? हाँ, एक्सरसाइज हो गई, पुशअप्स बोलते हैं उसको, नीचे गिरे उठ गए, नीचे गिरे और उठ गए, तो पुशअप ही हुआ ना, जैसे पहलवान करता है वैसे हो गया। ओके, एक कई यज्ञ करना कितना कठिन काम है ना, यज्ञ करना, सामग्री ले आना, पंडित जी आएंगे, वो भी सब कुछ ओरिजिनल होना चाहिए, आहुति भी और ब्राह्मण भी, तीन चार ब्राह्मण होना जरूरी है उसमें। एक होता बोलते हैं जो यज्ञ में आहुति डालता है, एक मंत्र बोलता है, एक पुरोहित होता है जो समय समय बताता है क्या करना चाहिए, और एक यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण होता है, कुछ करता नहीं, से बैठा रहता है। जैसे मंदिर में महाराज बैठे रहते हैं, बाकी लोग यज्ञ करते हैं, तो ये चार लोग होते हैं, वो भी चारों का चार प्योर होना चाहिए, शुद्ध सामग्री शुद्ध होना चाहिए। अभी घी नहीं आता है, गाय प्योर नहीं मिल रही है, जर्सी को गाय नहीं बोला जाता, आपको पता ना, या तो जर्सी है या गाय, जर्सी गाय नहीं होती। बताया था सुअर गधे ये सब के वीर से उत्पन्न किया जाता है ऐसे गाय जर्सी को, इसलिए इसको दूध पीने वाला व्यक्ति तमोगुणी में चले जाए, तमोगुण जर्सी जर्सी इसलिए गाय नहीं है। फिर भी क्योंकि गाय के स्वरूप में है इसलिए बाहर के देशों में तो जर्सी ही मिलती है, देशी गाय तो मिलती नहीं है, उनकी पूजा करते हैं ध्यान करते हैं, ऑलमोस्ट भैंस के समान है दूध, तमोगुण वाला दूध। लौल्यम अपि एकलम मूल्यम, लौल्यम अपि एकलम मूल्यम, हाँ अपि मतलब ही होता है, लौल्यम मतलब लालच, ही एकलम मूल्यम एक ही मूल है, किसके लिए, भक्ति के, भक्ति को पाने के लिए, भगवान का प्रेम पाने के लिए। क्या मतलब है, दो मिनट के लिए एग्जॉस्ट फैन चला सकते हैं, दो मिनट उसके बाद बंद कर देना। हाँ कोई भी वस्तु प्राप्त करने के लिए लोभ नहीं है तो वस्तु के लिए कार्य नहीं करोगे। हम सब किसी न किसी लालच के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, नौकरी लालच के लिए, नौकरी में कुछ मिलेगा ना हमको, धन मिलेगा, टका रुपया पैसा मिलता है महीने के अंत में, तो इसलिए पूरे मेहनत जी तोड़ कर काम करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, शॉप में है या बहुत बड़ा आपका स्टॉक का कोई बिजनेस है आपका, उसमें हम लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि धन मिलने वाला है, इतना दिन रात चिंता करते हैं, इसका कारण यही है। बच्चों को स्कूल इसलिए भेजते हैं कि अच्छा पढ़ा लिख के क्या होगा, कल को कमाएगा, तो हम लोग भविष्य में कुछ लाभ मिलने वाला है, इस लालच की वजह से हम लोग भी मेहनत करते हैं। तो वैसे ही कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए हमें लालच होना चाहिए, अभी लालच नहीं है, जैसे कि बच्चा खाने का मन नहीं करता ना इसको, बच्चे को तो कितने बहाने करते हैं हम लोग, वो देखो चंद्रमा मुंह खुलेगा मुंह में डाल लेते हैं, ये होता है ना, देखो गब्बर सिंह आ जाएगा मुंह खोलो, वो आ जाएगा देखो देखो भूत भूत भूत, अरे मेरा राजा बेटा क्या क्या करके खिलाते हैं, नहीं वैसे हमारे साथ हो रहा है। इस बार हरे कृष्णा फेस्टिवल में आपका अवार्ड दिया जाता है, हरी आप जब करो प्रभु, हाँ ठीक है, आप कितने अच्छे हैं, आप कितने सिंसियर हैं, आप कितने अच्छे हैं, ऐसे बोल बोल के हम लोग को जब कराया जा रहा है, कि मन नहीं है, लोभ नहीं, लालच नहीं है, बिल्कुल मन नहीं, जैसे छोटे बच्चे का कितना जबरदस्ती करते हैं ना, इसकी माँ पैर पकड़ के दबाती है, पिताजी हाथ पकड़ लेते हैं, फिर माँ दूसरे हाथ से नाक पकड़ लेती है ना, फिर उसके मुंह में घुसा जाता है जबरदस्ती खाने खाद्य पदार्थ, वो भी निकाल लेता सारा, होता ना, हम लोग ऐसे हैं, घुमा फिरा के पता नहीं कितने तरीके से हम लोग को डांट कर समझा कर उत्साहित कर कर ट्रेवल यहाँ पे यात्रा करा कर क्या क्या नहीं करते हम लोग के साथ, है ना, इंस्पायर करके प्रवचन में बोलते हैं प्रभु जी हम बालक क्या करो, हरे कृष्णा फेस्टिवल मनाते हैं या आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल हरी नाम निकालते हैं और स्लाइड्स में दिखाते हैं कितना मेहनत करते हैं भक्त स्लाइड बनाने में, सिर्फ क्या करने के लिए, नाम में रुचि आने के लिए, कोई लोभ ही नहीं है। लेकिन जब एक बार स्वाद चढ़ जाता है बच्चों को, जब चढ़ जाता है, अगर मदर नहीं होती तो खोल के निकाल के खाता है, याद है कितने लोगों ने चीनी चोरी करके घर में खाया, याद है बचपन में दूध पाउडर चोरी किया है ना, कितने लोगों ने गाजर का हलवा चोरी किया है फ्रिज से, किया कि नहीं किया, हम सब किए क्योंकि लालच एक बार आ गया है, एक बार टेस्ट लग जाता है ना, फिर आदमी छुप छुप के जप करता है, छुप छुप के मंदिर जाता है, लड़ाई झगड़ा करके भक्तों के बीच में जाता है, तो अभी वो लोभ नहीं आया। ये भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान ये लोभ दे दीजिए मुझे, एक बार लोभ आ जाएगा ना तो फिर तो कोई जरूरत नहीं संसार में, कुछ किस चीज़ की जरूरत नहीं है, आपको अगर बीमार भी होना तो आपको कोई रोकेगा नहीं भक्ति के लिए, बीमार होते सबसे पहले क्या पपन होता है, जब हमारे जीवन सबसे कमजोर कड़ी जो हमारी जप है, कुछ भी हो जाए हम जब बगल में रखते हैं, माला ये रही अपनी माला भाई, है ना। घर में किसी को तकलीफ है माला पकड़ रख दो, हमें तकलीफ है माला रख दो, एग्जाम आ गया माला रख दो, तबीयत खराब है माला रख दो, है ना। घर चेंज हो रहा है माला रख दो, नया बिल्डिंग लिए माला रख दो, हर कृष्ण फेस्टिवल माला रख दो, नहीं टूर जा रहे हैं माला बगल में रख दो। एकदम खाली होंगे जब कुछ नहीं, एकदम बोर हो रहे हो ना, तब बोलेंगे तो माला चलो कर लेते हैं, है ना। किसी ने बोला है, वचन दिया है किसी को, दीक्षा हो गई, अब तो लालच कहाँ है नहीं। ये लालच को डेवलप करना पड़ेगा अपने अंदर, तब जाकर कुछ होगा हमारा, अभी लालच है ही नहीं। और ऑल्टर खड़ा, कई लोग बैठ रहते हैं, भगवान का दर्शन जैसे खुलता है अपने स्थान पर खड़े हो जाना सर, और खड़ों के नहीं सर, खड़ों के टकटकी लगा देखना नहीं, प्रणाम करना है ना तुरंत। जैसे किसी बुजुर्ग को देखते हैं तो अपने स्थान से खड़े रहते हैं और क्या करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। और भगवान को जो ऑफर्ड वाटर है, जल है, अब वो जल नहीं रहा सिर्फ भाभी मंत्र जल है, भगवान का नाम, भगवान के चरणों का शरीर का उसमें जल है, तो वो अगर शरीर में छिड़केंगे तो पवित्र हो जाएंगे। उसमें सातों नदियों का आह्वान किया गया है, सात नदियां हैं, ठीक है, उसमें आचमन उसमें किया गया है, उसमें बहुत सारा पवित्र नाम भरा गया है ना। जब आचमन करते हैं तो ब्रह्मगुप्त की विधि बनाते हैं ऐसे, प्रयान जल रखते हैं, तो जल में देख के बोलते ओम केशवाय नमः, तो जब बोलते हैं मंत्र ना तो मंत्र उसमें प्रवेश कर जाता है, और जब उसको ग्रहण करते हैं तब शुद्ध होते हैं। सिर्फ पानी से शुद्ध नहीं होते, पानी से सत्वगुण बढ़ता है, लेकिन अभिमंत्रित हो जाने के बाद उसका अलग वैल्यू है, हाँ? तो इसलिए साधारण जल नहीं है। और अन्न विलासिता शून्य, और क्या कर किसको, हाँ भगवान की अर्पित वस्तुओं को निर्माल्य कहा गया है। भगवान को अर्पित की वस्तु में क्या क्या आता है, गुलाब जामुन, जलेबी, रसमलाई, माला, हाँ फूल माला, वस्त्र, अस्त्र, अस्त्र भी आता है, वस्त्र वही तो पूछ रहा हूँ क्या है वो। कितने आदमी आए थे, बहुत आदमी आए थे, कितनी संख्या थी, बहुत संख्या थी, ठीक है उत्तर, कितनी संख्या, संख्या बताओ ना।
जो हम अपने कोई भी स्थिति कर रहे
हैं, जैसे जैसे कि उदाहरण के लिए प्रभु जी बता दीजिए,
जैसे वस्त्र है,
वस्त्र है, इत्र है,
कपड़े
है, पगड़ी, टर्बन, भगवान के बर्तन है, भगवान की अगरबत्ती है, पुस्तक है, भक्तगण है, निर्माल याद रखना, क्योंकि आपने जैसी घंटी माला पहनी है, बच्चे को, पत्नी को, अपने आप को पहना दिया तो ऑफर कर दिया भगवान को, भगवान को ऑफर करते ना, तुलसी लगा कर, तुलसी लगा दी, ऑफर हो गया, नाउ योर बिलोंग्स टू कृष्ण, तदिया नाम वस्तु, तदिया नाम वस्तु, हरि वस्तु संबंधना, हरि वस्तु बन गया, हरि वस्तु मतलब हरा कलर का नहीं, हरि भगवान हरि की वस्तु है, पहले भी थे लेकिन आप भूख लग गया, जैसे कि चावल पहले भी भगवान का है, भूख लगने के बाद ही भगवान का है, पर भूख लगने के बाद क्या बन गया, प्रसाद, बोलते ना प्रसाद, बंगाल में जाएगा ना प्रसाद बोलते हैं, प्रसाद वो बन गया है, प्रसाद, प्रसाद सर्व दुखा नाम, भगवान का प्रसाद ग्रहण करने के बाद सारे दुख हर जाते हैं। इसलिए जैसे ही भगवान को हम अपने आप को ऑफर कर देते हैं दंडवत करके, तो दुख हरने शुरू कर लेते हैं। भगवान हरि का मतलब है जो हरने वाले हैं। किसको हरने वाले हैं? सैलरी, सोफा, घर का सामान, सब कुछ हरने वाले हैं। इस भौतिक संसार के प्रत्येक वस्तु को एक दिन शरीर भी आपका हर लेंगे और आपको तो आध्यात्मिक शरीर दे देंगे धाम में निवास करने के लिए। आपका यहाँ घर चीनेंगे तो वहां घर देंगे। प्रभुपाद जी का घर चीना, पूरा विश्व घर बनाया। प्रभुपाद जी के बच्चे छीने, पूरा विश्व बच्चे बच्चे तो भर गया। प्रभुपाद जी के सारे संतान तो प्रभुपाद जी के ना, अब तो कितने बच्चे सोच के देखिए। नहीं, पैसा छीना पैसा ही पैसा है, कितने कौन में जितने पैसे तो किसके हैं? प्रभुपाद के। लिखा रहता है प्रभुपाद अकाउंट। अब जाएंगे ना मंदिर में, अकाउंट डिपार्टमेंट का नाम है प्रभुपाद अकाउंट डिपार्टमेंट। ऐसे अकाउंट डिपार्टमेंट नहीं है, प्रभुपाद का पैसा से। तो ये लूट जाने दीजिए, भगवान लूटने आए हैं, लूट लो भगवान। आपने जितना लूटा माखन ना, उससे करोड़ों गुना हमारा धन लूट लीजिए। इसलिए भगवान का नाम है चौर अग्र गण्यम। क्या नाम है? चौर अग्र गण्यम। गण गणी मतलब गण बोलते हैं ना, जितने संसार में चोर है ना उसमें अग्रगण्य है, अग्रगणी टॉप मोस्ट चोर है। तो उस भजन में गाते हैं बिल्व मंगल ठाकुर, राधकस्य हृदयस्य चौर्यम। राधा का हृदय भी आपने चोरी किया है, माखन चोरी किया है आपने, हम सबका हृदय चोरी किया है। चुरा लो हमारा सब कुछ। क्यों पता चुरा चुराते किसका है? जो देना नहीं चाहता है, जो दान नहीं करना चाहता है, जो निछावर नहीं करना चाहता है ना, उसका चुराते हैं भगवान। इसलिए हम तो आसक्त हैं, सब कुछ छुपा कर रखा है, मेरा मेरा। तो चोरी कर लो प्लीज। पुरुषोत्तम मास में ये भजन गाते हैं जनरली, तो ये बहुत अच्छा भजन है कि आपने माखन चोरी की, आपने हृदय चोरी किया, आपने वस्तु चोरी की, मन चोरी किया, तो कृपया भगवान सब कुछ चोरी कर लीजिए। तो इसलिए अगर जब तक आप भगवान को निछावर नहीं करेंगे, समर्पण नहीं करेंगे, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। है ना, आपका गिलास भरा हुआ है, भगवान से बोल रहे हैं भगवान अमृत दे दो उसमें। भगवान बोले जगह तो बनाओ, जरा गिलास खाली तो करो। नहीं वो नहीं होगा भगवान, तो मैं कहाँ दूंगा, देने के लिए जगह खाली होना चाहिए। है ना, भजन चौर अग्र गण्यम नाम ही उसका भजन का, बहुत अच्छा है। उसके वर्डिंग सुनेंगे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ओके, और क्या है? एक बार हिजुरलेंस राधानाथ स्वामी महाराज बता रहे थे, मतलब गौर नित्या के मैं दर्शन कर रहा था, थोड़ा बहुत देखना गौर देता ऊपर नीचे होने लगे। 5 मिनट के बाद देखा एक्चुअली गौर देता वही है, मैं ऊपर नीचे हो रहा हूँ। मतलब वो कब जंप करना शुरू कर दिया हमको पता नहीं है। और जब तक स्वामी महाराज बताते हैं, वास्तव में जो हम नृत्य करते हैं तो हम आत्मा नृत्य करती है, शरीर उसका साथ देता है। ऐसा तो शरीर क्या मृत है, जैसे कि ये करताल है, वास्तव में मैटर है, तो इसको कौन घुमा रहा है? जीवात्मा। शरीर मृत है, इसको कौन हिला रहा है? मन। मन को कौन हिला रहा है? बुद्धि। बुद्धि को कौन हिला रहा है? आत्मा। यानी आत्मा शरीर को हिला रही है। तो वैसे जब आप डांस करते हैं तो आत्मा डांस करती है, शरीर उसके पीछे पीछे जाता है ऊपर नीचे। जैसे आत्मा निकल रहा है, शरीर किसी काम का नहीं रहता ना, बोलता है। तो वैसे आत्मा के कारण शरीर उसको हिलती जुलती है। जैसे मैं हाथ हिला रहा हूँ तो वास्तव में आत्मा हिला रही है उसको। तो आत्मा डांस करेगी तो शरीर अपने आप डांस करेगा। तो भगवान के कीर्तन में जो हम लोग नाचते हैं ना, तो वास्तव में हम नाचते हैं, शरीर उसके साथ हिलता है। है ना, यही कारण है। और आपको अंतिम एक शीट दी जाएगी जैसे 64 भक्ति के अंग लिखे होंगे, और उसमें लिखा जाएगा 1 से 10 तक मार्क्स दीजिए। आप अगर 1% करते हैं, 10% करते हैं तो 1 मार्क्स दीजिए, 20% करते हैं तो 2 मार्क्स दीजिए, और सब मार्क्स दीजिए हर एक्टिविटी पर। मैं भगवान को प्रणाम करते समय मंत्र बोलता हूँ, कितनी बार अब तक जीवन काल में जितनी बार मैंने की उसमें 50% में मानता हूँ कि करता हूँ, बाकी से मैं भूल जाता था या भूल जाता हूँ, तो उसको 5 मार्क्स। फिर आप 64 भक्ति के नियमों को मैं सबके सामने मार्क्स देते रहेंगे, टोटल ओवरऑल 64 भक्ति के नियमों कितना पालन कर रहे हैं पता चल जाएगा। तो उसको बोलते हैं असेसमेंट, अपना खुद का असेसमेंट करना, चेक करना अपने आप को, हम कितने पानी में, पानी में चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने आप को पानी में उतरना पड़ता है, कितना गहरा पानी देखने के लिए। भक्ति क्या है उसके लिए वैरी भक्ति के नियमों का पालन करना पड़ता है, वैरी भक्ति का 64 भक्ति के नियम। ओके, और कुछ मुद्राओं का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में, है ना। अगर हम सही मुद्रा में बैठे नहीं हैं, सही मुद्रा में खाते नहीं हैं, सही मुद्रा में भूलते नहीं हैं, तो क्या होता है तो उसका प्रभाव भी उतना नहीं पड़ता है। और चलिए आगे चलते हैं, आज का पहला टॉपिक है अर्च वगैरह के पीछे पीछे चलना, अर्च वगैरह के पीछे पीछे चलना। तो जब रथ यात्रा होती है या तो रथ यात्रा के सामने निकला जाता है क्योंकि उनको खींचा जाता है, या अर्च वगैरह चलते हैं तो उनके पीछे पीछे चला जाता है या आगे चला जाता है, आगे पीछे चल सकते हैं। भविष्य पुराण में ऐसा ही कथन है जिसमें कहा गया है यदि रथ यात्रा के समय जब अर्च वगैरह आगे से या पीछे से जा रहे हो तो यदि निम्न कुल में भी उत्पन्न पुरुष रथ के पीछे पीछे चलता है या आगे के चलता है तो निश्चय विष्णु के समान ऐश्वर्य प्राप्त करके उच्च पद तक पहुंच जाएगा। बताया गया कि यानी हम भगवान के रथ के सामने चलते हैं तो वैकुंठ की प्राप्ति होती है, ऐसा बताया गया इसमें भविष्य पुराण में कि रथ के आगे, भविष्य रथ के आगे के चलते हैं, रथ का रस्सा खींचते हैं, उसके सामने गाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं रथ के सामने, तो उनको विष्णु लोक में प्राप्ति हो सकती है। श्रद्धा से करना पड़ेगा, है ना। तो ये है अर्च वगैरह के सामने चलने का फायदा। जैसे कभी मंदिरों में भी देखा गया है पालकी को लेकर जाते हैं, पालकी को उठा कर जाया जाता है ना मंदिर के विग्रह को, कभी कभी हम लोग हरिनाम में होता है गौर नेता को लेकर जाते हैं, तो उनके सामने चलना शोभा यात्रा, उनके आगे चलना नृत्य करना, तो ये साधारण कारण नहीं है, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ प्रीचिंग के लिए कर रहे हैं, ये अपने लिए भी कर रहे हैं। कई बार ऐसे सोचते हैं प्रचार के लिए है, है ना, सिर्फ प्रचार के लिए नहीं है, ये अपने फायदे के लिए है। इसलिए बता रहे भविष्य पुराण में उच्च पद तक पहुंच जाएगा, विष्णु के समान ऐश्वर्य प्राप्त करके यानी विष्णु लोक में प्राप्ति करेगा। अगला है ये छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं है। विष्णु मंदिर या तीर्थ स्थानों की यात्रा समझाते हैं, वृंदावन मायापुर द्वारका है ना, बरसाना से जाते हैं हम लोग गोवर्धन, वो सब स्थानों में पुराणों में कहा गया है जो व्यक्ति वृंदावन मथुरा या द्वारका जैसे तीर्थ स्थानों में जाने का प्रयास करते हैं वे वास्तव में धन्य हैं, ऐसे यात्रा कार्यों से वे भव रूपी मरुस्थल को पार कर सकते हैं, है ना। बताया जाता है जैसे कि इसको परिक्रमा बोलते हैं, ये यात्रा बोलते हैं, जो व्यक्ति भगवान के धाम की यात्रा करता है, भगवान के मंदिरों की यात्रा करता है, जैसे यहाँ से मैरोली से मंदिर जाना, अगर मैरोली से अक्सर आप मंदिर जाते हैं वहाँ से आते हैं, तो इस प्रकार के कार्य करने से आप जन्म मृत्यु की जो यात्रा है ये समाप्त हो जाएगी, आप जन्म नहीं होगा, आपको माता के गर्भ में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, वो कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा अगला जन्म। तो आप जब परिक्रमा करते हैं तो ये जन्म मृत्यु की परिक्रमा है, ये चक्र है, ये खत्म हो जाता है, इसलिए यात्रा की जाती है। कोई पूछता ना आप लंबा टाइम वेस्ट क्यों करते हो, इतना दूर दूर जाते यात्रा करने के लिए, 84 कोस की यात्रा, 42 कोस की यात्रा, माया पर वृंदावन जाते हो, इट इज वेस्ट ऑफ वेस्टिंग टाइम। कोई बोलता है बताइए, पुराण बताया गया है हरि भक्ति सूत्रोदय में क्या बोलते हैं, भगवान कृष्ण के मंदिर में जानो के लाभों का वर्णन आया है। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, वृंदावन मथुरा द्वारका में ये प्रथा है कि सारे भक्त इन पवित्र स्थानों में स्थित विविध मंदिरों का दर्शन करने का लाभ उठाते हैं। हरि भक्ति सूत्रोदय का कहना है, जो लोग कृष्ण भावना भावित शुद्ध भक्ति से प्रेरित होकर मंदिर में विष्णु के अर्ज वगैरह का दर्शन के लिए जाते हैं, वे अपनी माता के गर्भ रूपी बंदी गृह में पुनः प्रवेश करने से मुक्ति पा लेते हैं। दोबारा गर्भ में जाना पड़ता है, 9 महीने का कष्ट तो होगा ही, जब 9 महीने हो गए ही नहीं, कोई गर्भ में जाएगा नहीं तो अगले के सारे अगला सारा स्कूल जाना, परेशान होना, फीस भरना, नौकरी करना, शादी करना, बर्बादी करना, सब खत्म हो जाता है ना। क्या बचता है? सिर्फ भक्ति। तो करना चाहिए, तो बड़ा आसान काम है, यात्रा करना नहीं। इसलिए जो भक्त मंदिर नहीं जा रहे हैं वो सोच रहे हैं हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनसे बड़ा संसार मूर्ख नहीं है। इतना कितना दूर है मंदिर यहाँ से? 10, 11, 12 किलोमीटर बस। लोग 25-25 किलोमीटर दूर नौकरी करने जाते हैं, नहीं हर दिन, हम तो बोल रहे सप्ताह में एक दिन जाइए, कोई भी दिन चुन लीजिए, जिस दिन आपकी दुकान बंद है, जिस दिन आपकी छुट्टी है ना, बंद कर दीजिए उस दिन, एक दिन कृष्ण के नाम, जिसके खा रहे हैं उसका खाना भी चाहिए है ना, वो खाते नहीं, एक दिन जाइए दर्शन करने के लिए, कौन दे रहा है उसको देखने के लिए, इतना सब सप्लाई हो रहा है, कौन सप्लाई कर रहा है भाई, देखे आए उसको, सप्ताह में एक दिन धन्यवाद दे दो, जाए थैंक यू वेरी मच कृष्णा, आपने इतना सब कुछ दिया है, मेरा जीवन अच्छा चल रहा है, आप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए, ऐसा प्रार्थना करने के लिए एक बार जाना चाहिए, थैंक यू बोलने जाना चाहिए है ना। सोच लीजिए कोई आपको व्यक्ति महीने का 10,000 सैलरी देता हो, श्वास देता हो, ऑक्सीजन दे रहा हो, आप एक दिन नहीं जाएंगे सप्ताह में उसको मिलने के लिए, थैंक यू बोलने के लिए, कितने एहसान फराम हो सर, नहीं एक दिन, कुछ घंटे, पूरा दिन भी नहीं, जाना आने मिला के 3 या 4 घंटे होंगे ज़्यादा ज़्यादा, संडे इज द बेस्ट डे, लेकिन कोई भी दिन जाइए वो भी बेस्ट बन जाएगा आपको, तो संडे में जो काम होता है वो हर दिन होता है, मंदिर में कोई संडे और मंडे नहीं होता, हमारे लिए सब दिन एक ही है ना। तो आप जाकर देखिए, कई वक्त हैं कटोरा सराय में ऐसे हैं, मंडे को छुट्टी होती मंडे को जाते हैं, वेडनेसडे से छुट्टी वेडनेसडे से जाते हैं, चाहिए किस लिए जाइए, डबल डबल फायदा, अभी का भी फायदा है, बाद का भी फायदा, क्या बता रहे हैं आपको, बंदी गृह में माता का गर्भ होगी, बंदी गृह में प्रवेश नहीं मिलेगा, बंद हो जाएगा, बदात्मा जन्म के समय माता का घर में रहने का कष्ट को भूल जाता है, किंतु यह अत्यंत पीड़ादायक तथा भयानक अनुभव होता है। इस भौतिक दशा में बचने के लिए मनुष्य की भक्ति भाव से विष्णु मंदिर जाने की सलाह दी जाती है, तभी वह भौतिक जन्म की कष्टप्रद स्थिति से अत्यंत आसानी से बच सकता है, अगर हम चाहते हैं तो। क्या करना पड़ेगा बस आपको? हाँ, सब काम छोड़कर एक दिन मंदिर जाना चाहिए। ऑनेस्टली बताइए कि कितने लोग हम में से ऐसे हैं जो पिछले 1 महीने में नहीं गए मंदिर, हाथ खड़ा कीजिए, जो नहीं गए 1 महीने के अंदर, समझ के देखिए, पिछले 4 बार आपने भगवान को धन्यवाद नहीं देने का, भगवान क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में, मैंने उसको सेंटर दिया वहां पर, मैंने उसको प्रसाद दिया, दीक्षा दिलवाई, हरि नाम दिया, भक्तों का संग दिया, भागवतम करवाया, हरे कृष्णा फेस्टिवल कराया, तो मेरे पास एक बार भी नहीं आया, मैं इतना बुरा हूँ, लोगों को कैसे लगता होगा, नहीं क्यों नहीं आता मेरे पास, क्या किया मैंने इसके लिए बुरा, सब कुछ तो अच्छा ही किया इसके लिए, नहीं सोच के देखिए, आप सब लोग, कई लोग पिता हैं इसमें, आपका बच्चा आपके पास मिलने नहीं आया, एक बहना यहीं दिल्ली में रहता हो और आप सब कुछ भेजते हैं, उसको खाना बना के भेजते हैं, रहने के लिए भेजते हैं। फोन भी नहीं किया, पापा आप कैसे हो, मैं जरूर मिलने आऊंगा, पापा मिल नहीं पा रहा हूँ आपसे, बहुत बिजी हो गए, लेकिन आना चाहता हूँ पापा। कभी सब फील हुआ है हमारे, यही पर है संत नगर ईस्ट ऑफ कैलाश में, एक बड़ा सा मंदिर है इस्कॉन का, बहुत बड़ा मंदिर है, कभी आप आइए, शायद आप भूल चुके हैं। माता जी में कितने लोग एक महीने के अंदर नहीं गए हो, वेबसाइट पर नहीं, रियल टाइम जाइए प्लीज। बैटरी चार्ज करने के लिए सारे मुसलमान हो चाहे क्रिश्चियन हो चाहे पंजाबी हो, सरदार लोग जाते हैं ना गुरुद्वारा, गुरुद्वारा जाते हैं संडे को नमाज पढ़ने के लिए, मुसलमान जाते हैं शुक्रवार को, है ना, क्रिश्चियन जाते हैं रविवार को। आप जाके देखिए, हम तो बोलते सब जगह भगवान है, तो मंदिर नहीं है, मंदिर में तो है, सब जगह भगवान तो मंदिर क्यों नहीं होगा। जैसे कि आप टॉयलेट कहाँ करते हैं, किचन में कहाँ करते हैं टॉयलेट, टॉयलेट में, वॉशरूम में, है ना, कि कुकिंग कहाँ करते हैं, किचन में, सोते कहाँ हैं, बेडरूम में, पूजा कहाँ करनी चाहिए, मंदिर में, भक्तों का संग कहाँ होगा, मंदिर में। नहीं जी, हमारा सेंटर खुल गया, ये मंदिर है, इस सेंटर को कहाँ से सोर्स मिल रहा है, मंदिर से। एक बार पावर हाउस में जाकर देखिए क्या हो रहा है पावर हाउस में, जाइए, सब कुछ छोड़ के जाइए उससे मिलने के लिए जो सब कुछ दे रहे हैं, जिसके पीछे पड़े हो ना, जो दुकान, जो मकान, जो बच्चे, जो नौकरी, जो धन, जो वैभव जो आपके पास है, वो सब उन्हीं को दिया हुआ है, ये उनसे मिलने जाइए। डबल फायदा है, थैंक यू भी बोल दोगे, एहसान फरामोश भी कहलाओगे नहीं, और क्या होगा, जन्म मृत्यु के चक्कर से मर भी जाओगे, भक्ति के अंग बाल हो जाएगा, कमाल की बात है, ट्रिपल फायदा। ठीक है, जैसे बच्चा जन्म होता है तो माता घर में प्रार्थना करता है, हे भगवान मुझे यहाँ से निकाल दो, मैं बहुत दुखी हूँ, तीसरे स्कूल में पढ़ी है, मैं बहुत दुखी हूँ, बाहर निकल के आपकी भक्ति करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, पक्का प्रॉमिस, भगवान की कसम, पढ़ेंगे तो भगवान ही ना, तो भगवान की कसम बड़ी ले लेते हैं, आपकी कसम भगवान, बाहर निकल के मैं सिर्फ भक्ति करूंगा। हम सब ने झूठे वादा किया था भगवान से गर्व में, हम सब ने, ऐसा भागवतम बताया गया है कि हर बच्चा गर्भ में भगवान से प्रार्थना करता है, और जैसे ही बाहर निकलता है बस माया पकड़ लेती उसको, भूल जाता है, खेलता है, स्कूल जाता है, नौकरी करता है, बिजनेस करता है, मोटरसाइकिल चलाता है, कार चलाता है, उसके बच्चे जन्म होते हैं, स्कूल उसको एडमिशन कराना सेंट्रल स्कूल में, परेशान होंगे, उसकी नौकरी कराना, इंजीनियरिंग कराना, शादी कराना, उसके बच्चे का एडमिशन, मर जाता है, मरते मरते बोलता है दुकान में कौन बैठा है, सब तो यहाँ है, नहीं भगवान बोलते हैं, जब मरते रहते हैं भगवान आते हैं, काल के रूप में, कालोस्मि मृत्यु सर्वहर्षम, पकड़ने आएंगे, भगवान आप आ गए, तुम नहीं आ रहे तो मैं आऊंगा ना, किसी दूसरे रूप में आऊंगा, लेकिन आऊंगा जब, फिर भगवान सब कुछ छीन लेते हैं, बट मत छीनो मेरा, मैंने तुम्हारे साथ किया किया है, बोले सब कुछ मैंने दिया है, तुमने वादा किया था तुम आओगे पर आते नहीं हो, एक मौका और दूंगा। कोई हम बोल सकते ना, नहीं नहीं अब गलती नहीं करेंगे, ये लास्ट लाइफ हम लोग भजन करेंगे, अब माता के गर्भ में नहीं जाएंगे, ठीक है, क्या पता पिछले जन्म में भी यही बोला था हमने, नहीं पिछले जन्म में बोला होगा भगवान ये लास्ट लाइफ है, अब गर्भ नहीं जाएंगे, अब गर्भ मांगे क्या बोल रहे, भगवान सॉरी, भगवान प्लीज क्षमा कर दीजिए, अब बाहर निकलूंगा ना भजन करूंगा पक्का, कष्ट मत देना। चलो अपने ही बच्चा है भगवान, ठीक है बाहर जाओ, फिर भूल लाते फिर धोखे पे धोखा, धोखे पे धोखा। मैं आपको लगातार धोखा दे रहा हूँ तो कैसा लगेगा आपको, चिड़ा जाएगी है ना। बार बार आपको धोखा दे रहा हूँ, हर रोज जब जाते हैं वो ठग लेता है दुकान वाला। कितने के जी आलू? 50 रुपए किलो। आप ले आए बाद में चलो 20 रुपए किलो। हर दिन ये होता है, सोच के देखिए। और दया की बात यह है कि आप बार बार उसी के पास जाते हो और बार बार आप ठगता है। आप जाओगे उसके पास ठगवाने के लिए अपने आप को, ये महान पुरुष आप 50 रुपए का लू देते मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन भगवान ऐसा कहते हैं, सोचो बार बार हमारे पास आते हैं तो बार बार हम उसको ठगते हैं, उनको झूठ बोलते हैं, कितने कितने वादे करते हैं। भगवान ने लास्ट टाइम कितने लोग मंदिर माता देखना देखोगे ना, कान पकड़ते हैं, नाक रगड़ते हैं, ऐसे करते हैं कुछ बहुत सारे। अब नहीं करूँगा भगवान पक्का। एक माता जी आए थे, वो चैंटिंग कर रहे थे तो दर्शन बंद था, फिर भी कान पकड़ो, कान पकड़ लिया। वो लोग कभी नहीं करेंगे, तो शायद नशा करता हुआ, तो कभी नहीं करूँगा। आज लास्ट बस, उसने कहा आज लास्ट, आज ही पीना है उसको। अब पत्नी समझ नहीं पाई इस बात को, बोलने साहब झूठ बोल रहा है, पत्नी बुलवा रही है, कान पकड़ा है, नाक रगड़ो, वो जो संगमरमर का बना हुआ रेलिंग जैसा उसमें नाक रगड़ रहे हैं, ऐसे 9 बार रगड़ो, 9 बार रगड़ रहे हैं, क्या होगा फिर जाकर वही करेगा। समझ रहे हैं हम धोखा किसको दे रहे हैं, अपने आप को। और क्या बोल रहे हैं, देखा कैसे उल्लू बनाया भगवान को, भगवान को उल्लू नहीं बनाया। आगे है विष्णु मंदिर की परिक्रमा करना। हरिभक्ति सुदोदय में कहा गया है, जो व्यक्ति विष्णु के अर्चक की परिक्रमा करता है वह जगत में बारंबार मृत्यु चक्र से छूट जाता है। बदात्मक अपने अस्तित्व के कारण बार-बार जन्म तथा मृत्यु के माध्यम से परिक्रमा करता रहता है, इसका निवारण मंदिर में अर्चक की परिक्रमा करने से आसानी से हो जाती है। अगर हम परिक्रमा करेंगे मंदिर का तो इस भौतिक संसार की परिक्रमा से बच जाएंगे। हम 84 लाख स्टॉपेज में रुकते हैं परिक्रमा कर रहे हैं, यहाँ रुकते हैं चलते हैं रुकते हैं चलते हैं, तो उससे बच जाएंगे। भारतवर्ष में वर्षा ऋतु के 4 महीने जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर मासों में चातुर्मास उत्सव मनाया जाता है। अब चातुर्मास आने वाला ना, जिसका शुभारंभ श्रावण मास से होता है। इन 4 महीनों में एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करके कृष्ण भावनाथ का प्रचार करने वाले साधु पुरुष सामान्यतः किसी एक स्थान पर विशेष तरह किसी तीर्थ स्थान में जाकर टिक जाते हैं, है ना। परिक्रमा नहीं करते वो 4 महीना, ऐसा माना जाता है नियम है। और इस अवधि में कुछ विशेष विधि विधानों को दृढ़ता से पालन करना होता है। कौन कौन से विधि विधान है? क्या विधि विधान है? 4 चातुर्मास तो कुछ वर्जित खाने के लिए रहता, और साता ज्यादा करना, कुछ कड़े नियम होते हैं, जमीन पे सोना, इंद्र तृप्ति नहीं करना, ज्यादा जप करना, प्रातः काल उठ जाना ब्रह्म मुहूर्त में 12 बजे, ब्रह्म मुहूर्त 12 बजे होता है ना, चातुर्मास में बताते हैं ये विधि उनको पालन करते हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है कि यदि कोई इस अवधि में विष्णु मंदिर की कम से कम 4 बार परिक्रमा कर ले तो समझा जाता है कि उसे ब्रह्मांड की यात्रा कर लिया है। सोच के देखिए, अगर चातुर्मास में कुछ 4 परिक्रमा एक बार भी कर लेता है तो क्या माना जाता है? पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा हुई। तो ब्रह्मांड की परिक्रमा से हमें क्या लाभ बताइए, आप बताइए। ब्रह्मांड की परिक्रमा करेंगे तो क्या लाभ होगा? बोली पूजा आपके पीछे, आपके पीछे छुपिए मत, ब्रह्मांड की परिक्रमा से। ब्रह्मांड तो भौतिक जगत है, सोशल बात है ना। ब्रह्मांड की परिक्रमा पर लाभ क्या है? यहाँ तो स्पिरिचुअल कर रहे हैं और मटेरियल चीज मिल रही है। वेरी गुड, यही उत्तर इसका। ब्रह्मांड के अंदर कितने सारे तीर्थ हैं, ब्रह्मांड के अंदर कितने सारे मंदिर हैं, वृंदावन तो उसके अंदर है, गोवर्धन उसके अंदर है। आप सोचिए एक चक्कर मंदिर के लगा रहे, चार चक्कर, और फिर ब्रह्मांड का फायदा हो रहा है, मतलब पूरे ब्रह्मांड में जितने वस्तुएं हैं, जितने लोग हैं, जितने भक्त हैं, जितने मंदिर हैं, सबका परिक्रमा नहीं हो गया? जबरदस्त फायदा है। तो मंदिर जाए तो परिक्रमा जरूर करें। ऐसी परिक्रमा ऐसे समस्त पवित्र स्थानों का दर्शन हो गया समझा माना जाता है, जहां से होकर गंगा नदी बहती है। चातुर्मास के विधि विधानों का पालन करने से भक्ति पद शीघ्र प्राप्त होता है। तो विष्णु मंदिर की परिक्रमा करने में चातुर्मास को भी गिना जा रहा है। चतुर्मास करने से बता रहे और क्या होता है, उन स्थानों का परिक्रमा मान लिया जाता है जिन जिन स्थानों में गंगा बहती है। जहां जहां से गंगा बहती है उस स्थानों में पवित्र स्थान माना जाता है, गंगोत्री यमुनोत्री स्थान जो है। उसके बाद वो आगे आ जाइए तो बद्रीनाथ, ऋषिकेश, हरिद्वार है ना, आगे जाएंगे तो संगमों का संगम से आगे अलग अलग स्थान है, मायापुर गंगा सागर तक, यह भी गंगा बहती है, सबको माना जाता है तीर्थ है। बहुत कई जगह फेमस नहीं है पर छोटे छोटे मेले लगते हैं, पूजा पाठ होता है गंगा के किनारे, है ना। तो उस सब स्थानों में परिक्रमा का लाभ हो जाता है। सिर्फ क्या किसका परिक्रमा करने से, रेस्टोरेंट का, किसका, भगवान के मंदिर का परिक्रमा करने से, बियर बार करनी। चतुर्मास में भगवान के मंदिरों का परिक्रमा करने से हमें दो लाभ हैं, कौन कौन से, ब्रह्मांड का परिक्रमा हो जाएगा, दूसरा नहीं वो तो इसमें नहीं था। हाँ चातुर्मास की बात अलग हो रही है, वैसे तो उसमें इंक्लूडेड है जो बोल रहे हो, पर चातुर्मास में जहाँ जैसे करने से जहाँ जहाँ गंगा बहती है उन स्थानों का तीर्थ यात्रा हो जाएगा, आपको अलग से तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं, यूनिवर्सल। ओके आगे अर्चना, अर्चन, अर्चना का अर्थ है मंदिर में अर्चन करके पूजा करना। इससे संपादित करने से इसकी पुष्टि होती है कि मनुष्य शरीर नहीं अपितु आत्मा है। जितना हम विग्रह के सामने जाएंगे, विग्रह की सेवा करेंगे, इससे समझ जाएंगे कि हम शरीर नहीं क्या है, आत्मा है, बोध होता है उससे, इल्यूजन हटता बताते हैं। श्रीमद् भागवतम में 10वां स्कंद 81वां अध्याय 19वां श्लोक ये बताया गया कि किस प्रकार कृष्ण के घनिष्ठ मित्र सुदामा ने एक ब्राह्मण के घर जाते हुए अपने आप से कह रहे थे, कृष्ण की पूजा यानी अर्चना करने से ही मनुष्य स्वर्ग के ऐश्वर्य मुक्ति ब्रह्मांड के समस्त लोगों में श्रेष्ठता इस जगत के सारे ऐश्वर्य तथा योग शक्ति प्राप्त कर सकता है। अपने आप को ही बोल रहे थे, कौन, सुदामा विप्र जो थे भगवान के भक्त थे, वो भगवान से मिलने जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने क्या किया, ये घटना सोची, ये बातें सोची। जिन घटनाओं से सुदामा ने वचन अपने आप से कहे हुए थे इस प्रकार, श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को आदेश दिया था कि वे किसी ब्राह्मण के घर जाकर कुछ भोजन मांग लाए। ब्राह्मण लोग महाजन महान यज्ञ कर रहे थे। श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा कि तुम जाकर उनसे कहो कि कृष्ण तथा बलराम भूखे हैं और कुछ भोजन चाहते हैं। तो सुदामा वहां गए तो ब्राह्मण ने कुछ भी देने से मना कर दिया, किंतु ब्राह्मण पतियों ने जब सुना कि श्री कृष्ण को कुछ भोजन चाहिए तो उन्होंने तुरंत भोजन की बहुत स्वादिष्ट प्लेटें लगा दी और वे श्री कृष्ण को भोजन पहुंचाने स्वयं गई। विष्णु रहस्य में बताया गया है, इस लोक में जो भी व्यक्ति विष्णु को पूजा करने से लग्न है वो आसानी से वैकुंठ लोक अर्थात ईश्वर के नित्य आनंदमय साम्राज्य को प्राप्त कर लेता है। भगवान को भोग लगाने का बहुत बड़ा महत्व है। भगवान भूखे थे, अपने मित्रों के साथ बोले, एक मित्र बोले जाओ पास में ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ में कई भोजन आदि होते हैं वो सब ले आओ, आंकर बोलना बलराम जी मांग रहे हैं, मेरा नाम मत लेना, कृष्ण जी का क्यों पता? कृष्ण को ग्वाला मानते हैं, ब्राह्मण लोग ग्वाले को इतना रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, क्षत्रिय का रेस्पेक्ट करेंगे, बलराम जी क्षत्रिय हैं, वसुदेव के पुत्र हैं, कृष्ण को नहीं मानते, कृष्ण को नंद का पुत्र मानते हैं, इसलिए बलराम का नाम लेना। तो लोग गए बलराम का नाम मांगे, नहीं माने, तो फिर उसको नहीं मांगे, नहीं दिए उन्होंने ब्राह्मणों ने, बोले चलो चलो डिस्टर्ब मत करो, हम यज्ञ कर रहे हैं, देखते नहीं परेशान करने आ गए। तो देखते यज्ञ पत्नियां, वो यज्ञ पत्नियां जो होती है वो यज्ञ में नहीं बैठती हैं, कई स्थान में बैठती हैं, सरोवर में, आश्रमों में, तो वहां पर खाने पीने की बहुत सारी वस्तुएं तैयार की थी यज्ञ के लिए स्त्रियां, उनसे जाकर बोले ग्वाल बाल, तो बोले इसमें कृष्ण का नाम लेते हैं, बलराम का नाम लिया तो नहीं हुआ था ना, कृष्ण का नाम लेते हैं। बोले कृष्ण को भूख लगी है, बलराम को भूख लगी है, कृपया कुछ खाने को दीजिए, बोले सारा ले जाओ, हम भी चलती साथ में। तो यज्ञ पत्नियां यज्ञ छोड़ के चले गई, यज्ञ के जो पुरुष थे यानी जो यज्ञ करने लोग ब्राह्मण गुस्से हो गए, बोले तुम छोड़ कर गई हो, देखना तुम्हें एक बार तकलीफ होगी। तो बोले ठीक, कोई परवाह नहीं है आपकी, छोड़ कर गई और भगवान ने उनको बहुत कृपा दी फिर भगवान कृष्ण ने। तो वैसे अर्चक वगैरह के लिए आप सब कुछ निछावर करते हो तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, है ना। तो अर्चक वगैरह के लिए बहुत सीरियस होना पड़ेगा हमें भक्ति में, क्या क्या ऑफर करना है, कब कब ऑफर करना है, कैसे ऑफर करना है, सब जानना पड़ेगा। तो अर्चक वगैरह का प्रारंभ होता है कहाँ से, सेवा कहाँ से प्रारंभ होती है, आचमन से। कितने लोग को आचमन करना आता है, हाथ खड़ा कीजिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, चलिए आठों में से एक बुलाऊंगा यहाँ पर आचमन करने के लिए, आचमन पात्र ले आइए पानी भर के, पानी होना चाहिए उसमें, आइए प्रभु आप आइए यहाँ खड़े हुई, विसर्जनिया भी ले आइए, विसर्जनिया आइए यहाँ पर, यहाँ रख दीजिए आचमन पात्र, नीचे विसर्जनिया, प्रभु जी आप लोगों की तरफ देखकर बताएंगे आचमन कैसे किया जाता है शुरू से। ठीक है, जो लोग आचमन किए हैं करते हैं, आप बताइए क्या गड़बड़ है इसमें। हाँ, पहले सातों नदियों का आह्वान करते हैं, आप पता है, बोलिए करिए। सही मंत्र बोल रहे हैं, कौन मंत्र बोलेगा, बोलिए जोर से। हाँ, च एक दो बार बोला जाता बस, ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सनद्धिं कुरु। क्या रहा ये सात, हे सातों नदियां गंगा यमुना सरस्वती कावेरी आदि जो हैं, कृपया इस स्थान पर प्रकट हो जाइए जल में। और उंगली डालते समय कहाँ, कैसे करते हैं उंगली डालते हैं, नाखून टच नहीं होना चाहिए, ये भग्र होना चाहिए स्किन, ठीक है, और तब मंत्र बोलना है। तो इससे क्या हुआ, जल में आप कौन आ गए, सातों नदियां आ गए, अब नदियों से आप आचमन कर रहे हैं, इसको पवित्र किया जाता जल को, टैप वाटर है, आप कहीं से खरीदे बिस्लेरी, पता नहीं कहाँ से विष ले रही है कि विष ले रही है, और उसको शुद्ध करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा, ओके शुद्ध हो गया। और क्या गड़बड़ था, पहले हाथ को शुद्ध धोना चाहिए, अब डायरेक्ट आचमन करना शुरू कर दिया, ठीक है। और ब्रह्मकुप के कोने से पिया जाता है, कुप में घुस कर नहीं, जल पानी पीते हैं कुएं में घुस कर नहीं पीते हैं, कुएं के कोने से निकाल कर पीते हैं, या फिर जलाशय में डूब के नहीं पीते हैं पानी, अंदर घुसे घूट लिया चले आए, ठीक है, यहाँ से पिया था। और हाँ, मंत्र को, मंत्र बोलते हैं इसको, इसमें रख कर जल, ये ब्रह्म को बताया, इस उंगली को अपने अंगूठे से दबाइए और तीन उंगली को जोड़ दीजिए, सब लोग करके देखिए, कई लोग सोचते हमें तो आता है, जब, लेकिन जब करते हैं तो गड़बड़ हो जाता है, तो करना चाहिए। ठीक है, ये विधि है। अब ऐसे रखेंगे, अब इसमें जल डालते हैं जब, तो इसको बोलते हैं, इस स्थान को, खाली स्थान को ब्रह्मकूप। क्या बोलते हैं? ब्रह्मकुआ, है ना, ब्रह्मकूप। इसमें जब जल डालते हैं, है ना, उसके बाद क्या होता है, उसको देखकर मंत्र बोलना पड़ता है, ओम केशवाय नमः। फिर उसको इस स्थान से पिया जाता है। ऐसा नहीं पीते हैं, एक आइसक्रीम खा रहे हो क्या? ठीक है, आ सकता है। आप क्या, कितना है जो आवाज निकालोगे उसमें से? है ही नहीं, तुम क्या सुना नहीं? कुछ होना भी तो चाहिए। चरणामृत थोड़ी है, पीने वाली चीज थोड़ी है, कस्टर्ड खा रहे हो क्या? ओके, और क्या गड़बड़ किया उन्होंने? धोने की जरूरत नहीं है, नहीं भी धोने चल रहा है, क्योंकि आप यहाँ से पीते हैं तो अशुद्ध नहीं होता स्थान। आपने यहाँ से पिया तब तो धोने पड़ेगा, तब तो पूरा नहाना चाहिए आपको। और ठीक था, थैंक यू। अब आइए, जिसको जो सोचते हमें आता है, आइए। विधि तो बताई दिया पूरा सारा, आइए प्रभु। नहीं आता है, अभी तो आता था, 5 मिनट पहले आता था। आपको पता है, हम मंत्र पढ़ते हैं ना, 3-3-5 पढ़ते हैं, 24 मंत्र होते हैं आचमन के। वास्तव में आंख नाक मन को शुद्ध किया जाता है, उंगली से किया जाता है, सर को छुआ जाता है, हृदय को छुआ जाता है, बांह को छुआ जाता है, उंदा मुद्राय नमः, पीठ को छुआ जाता है, कमर को छुआ जाता है, पैर जल डाला जाता है। 24 मंत्र होते हैं, वो कब सीखोगे जब 5 ही नहीं आता है, है ना। शरीर को शुद्ध करना बहुत जरूरी, बहुत अपवित्र शरीर है। मल मूत्र त्यागना, विचार पसीना निकलना, आंखों से पानी, नाक मुंह, 9 द्वार से गंदगी निकलती है हमारे शरीर में, है ना, 9 द्वार से। कूड़ा करकट का जो जरूरत है ना, जहाँ पर यूज भी लिख रहता है, आप कूड़ा डाल लेते छेद से, वही है हमारा शरीर, कुछ नहीं। कूड़ा ले रहे हैं अंदर, कूड़ा निकल रहा है, कूड़ा घर। अब यहाँ पर लिख देना चाहिए कूड़ा घर, टैटू बना लीजिए, कूड़ा घर ही है। लोग कूड़ा डाल रहे हैं टीवी से, दुनिया भर के रास्तों में, सड़क पर मल त्यागे कुत्ते उसको देखते हैं तो अंदर थोड़ी अच्छा लग जाता है, आँख देखा तो कचरा ही जाएगा। फिर बदबू आती है, सुनते उसी को, ताजा ताजा मल गिरा रहता, सुनते फिर तो गाना बज रहा होगा, सब्जी वाले चिल्ला रहा ले 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 लो, दुनिया भर के सुनते रहते हैं, गालियां दे रहे हैं आस पड़ोस के लोग सुन रहे हैं। ठीक है, फिर खाते हैं, दूषित वातावरण सुनते हैं, समंदर कचरा ही तो जा रहा है। फिर कचरा निकालते हैं हम लोग सुबह शाम, सुबह उठते हैं तो शरीर से खुशबू थोड़ी आती है, सब बदबू आती है। इसलिए स्त्री पुरुष जब एक दूसरे से मिलते हैं, जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जब मिलते हैं तो एकदम बेस्ट, अपना बेस्ट जिंदगी का काम करके जगह रहते हैं, अच्छे से नहाए धोएंगे, वो शेविंग बना लेगा और सब डाल के जाएगा, अच्छा बेस्ट ड्रेस बन के जाएगा, नहा धो के बढ़िया से फ्रेश हो, है ना, बेस्ट बन के जाते हैं। तो उससे क्या होता है, दोनों में प्रेम होता है बढ़िया, क्योंकि बेस्ट बेस्ट है, कहीं विवाह हो जाता है, शादी हो जाती है, फिर फोन खुल जाता है, अरे इसके शरीर से बदबू आती है, है ना, इसके मुंह से भी बदबू आती है, इसके सांसों में बदबू है, इसके शरीर में जुए हैं, तो समझ में आता है ना, इसके शरीर में दाग है, इसको भी खुजली है, वो खुजलाएगा नहीं, कितनी खुजली आ रही हो ना वहां पर, पहले खुजलाते नहीं जब मिलने आता है, जब घर में हो तो कहीं में खुजल, सामने खुजला, हाँ तो क्या खुजली तो क्या कर रहे हैं, शादी होगी अब क्या करेंगे, नहीं सच बात है कि नहीं है, सारा असलियत बाहर आ जाता है। अच्छा मैं अब इसका उत्तर देता हूँ, शराब कैसा है बताओ, कैसे आपने पिया है? सुन के पता चल जाता है ना, लोग अनुभव बताते हैं अपना। प्रभु जी लड़ाई होती है, अब समझ में आ गया है सब संसार में सब चीजें गंदी है, झगड़ा होता है, लड़ाई होता है, तो अपने आप बता ही देते हैं। कुछ चीजें सुनकर अनुभव की जाती है, बुद्धिमान व्यक्ति सुनकर अनुभव कर लेता है। और शास्त्रों में बताया गया है, आप पढ़िए सातवां स्कंद अंतिम के अध्याय है, उसमें स्त्री पुरुष के बीच में संबंध और शरीर की बनावट। पांचवा स्कंद में बताया पुरंजन की कथा, उसमें नौ द्वारों का वर्णन किया गया है, वो स्त्री से कितना आसक्त था, अगले जन्म में स्त्री बना और क्या कारण था, किस किस द्वार से किस प्रकार की गंदगी निकलती है वर्णन किया। कश्यप मुनि की जो पत्नी है, 13 पत्नी है, उसमें दीति अदिति आदि है ना, खरदु आदि कर कयादु ऐसे सब हैं। तो वो सब स्त्रियों में से जो दीति है वो राक्षस उत्पन्न करती है। तो दीति जो है अपने पति को अपने काबू में रखने के लिए बहुत सेवा कर करके उसकी इच्छाएं पूरा करती है। तब वो कम से कम 18 श्लोक में बता रहे हैं कि स्त्रियां किस प्रकार चालाक होती हैं, अपना काम कराने के लिए क्या करती हैं, फुसलाती हैं, सेवा करती हैं। तो बोलते हैं हाय मैं आज मूर्ख बन गया, दीति के चंगुल में फंस गया। तो सब चीजें शास्त्र में दिया हुआ ऑलरेडी, सब कुछ भागवतम में दिया हुआ है। आप भागवतम पढ़िए आपको लगेगा कि संसार में जो हो रहा है सब दिया हुआ है, बस पढ़ने की देरी है। कई ग्रंथों में भी दिया हुआ है, प्रवचन से भी सुनते हैं, ब्रह्मचारी क्लास में बताते हैं कि स्त्री पुरुष के बीच जो संबंध हो कितना भया हुआ है, तो अब मत करो शादी, उससे भी ज्ञान होता है। तो सुनकर ज्ञान लेना बुद्धिमानी है। एक लाइफ एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, लाइफ का इतना पूरा जीवन एक्सपेरिमेंट हम ब्रह्मचारी को बोलते हैं। स्त्री पुरुष के बीच में जो सुख प्राप्त होता है वो प्राप्त करने के लिए एक्सपेरिमेंट करके कि सुख होता है कि नहीं होता है, पूरा जीवन बर्बाद मत कीजिए, ठीक है। जैसे आपने कोई दवाई बनाई, दूसरे एक्सपेरिमेंट मनुष्य पर नहीं करते हैं, किस पे करते हैं, जानवर पर, जानवर को समझ में आया था भाई ये गड़बड़ है। वैसे इतने लोग एक्सपेरिमेंट कर ही रहे हैं, देख लो कि जीवन में किसी भी व्यक्ति को टटोल लीजिए, कहीं भी छू लीजिए ग्रस्त जीवन को, सब जगह दर्द है, सब तो कष्ट झेल रहा है। उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति विवाह करता है तो जानिया सुनिया विष खाइनू, जानबूझ के विष खाने के समान है। प्रभु जी हम सोने के प्याले में विष पी रहे हैं, छोटे भूटे नहीं आ रहा, इज्जत की मौत मर रहे हैं, नहीं होता है। तो ये अनुभव सुन के भी कर सकते हैं। दूसरे स्तर का व्यक्ति होता है, सेकंड क्लास का, वो अनुभव करता है कैसे अपने जीवन में अनुभव करके अनुभव करता है, सुन के दूसरे का अनुभव सुने। प्रभु जी इस तरह मत जाना, बहुत जाम लगा है, हट तुम्हारी बात नहीं मानते, हम जाएंगे फंस गए जाम में। अरे तू सही बोल रहा था भाई, जाम लगा है, अरे उसकी बात सुन ले, इधर चल रहा थे, ऐसे होता ना। प्रभु जी वहां गड्ढा है, अरे हम गड्ढा उड्ढा कुछ नहीं मानते हैं, हड्डा है सामने देखा, अरे गड्ढा उड्ढा गड्ढा बहुत गहरा है, चोट लग जाएगी, फालतू बात है, हम जानते ना सुपरमैन के फैमिली के हैं, खुद गए टू गिर बहुत गड्ढा खतरनाक है, मान गए ऐसे मानते। फिर तीसरा व्यक्ति होता है गड्ढा में गिरता है, टूटता है, फिर दूसरे दिन आता है, बोलता है गड्ढे में फिर से गिरना पड़ेगा, क्या करें गड्ढा है, ऐसा होता नहीं है। सरदार जी रहते हैं ना, केले के छिलके से फिसल जाते हैं, दूसरे दिन फिर केले के छिलके, तो बोलता अरे फिर फिसलना पड़ेगा। तो तीसरे दर्जे का व्यक्ति होता है, प्रथम दर्जे के व्यक्ति क्या करता है, दूसरे से अनुभव करके सीख जाते हैं। हम देख रहे संसार में सभी लोग माया में बंधे हुए हैं, सभी लोग भूख प्यास परेशान उसी चीज से डूबे उसी चीज में, तो एटलीस्ट हमें नहीं करना है, इसका अनुभव कर लेता है। धन संपत्ति, अरे देखो देखो वो जा रहा है व्यक्ति, कंधे पर सब ले जा रहे हैं, उसके जीवन की संपत्ति तो यहीं रह गई, मेरी भी संपत्ति यहीं रह जाएगी। जैसे महावीर जो थे, महात्मा बुद्ध है ना, और ये सब लोग नहीं, सिद्धार्थ ने क्या किया, देखा था क्या हुआ इसे, बोले ये तो मर गया इस कंधे पर क्यों ले जा रहे हैं, बोले शरीर त्याग दिया है, बोले ये कहाँ जा रहा है, बोले इसको जला देंगे, अरे इसकी सब वस्तुएं कहाँ चले गई, वो तो यहीं रहेंगी सारी। तो लोग अनुभव करते हैं अच्छा मेरी वस्तु भी रहेगी, हालांकि ऐसा अनुभव करते हैं पर एक दिन बाद दूसरे दिन भूल जाते हैं, लेकिन ऐसा अनुभव करना चाहिए। तो दूसरे से अनुभव कीजिए। तो आप लोग माध्यम है इसका, आप लोग बताते हो, अपने जीवन की घटनाएं तो हमें अनुभव हो जाता है। इसके लिए पूरे जब जी न्यूज क्यों नहीं, न्यूज पढ़ना क्यों मना है भक्तों को, मतलब जरूरत क्या है? बोलते बहुत जरूरत की चीजें उसमें आती है, मतलब जो भी जरूरत की चीजें लोग आपके पास आके बता के चले जाएंगे। प्रभु जी भूकंप आया है 7.9 रिएक्टर का नेपाल में, काठमांडू और एक सिटी के बीच में 2500 लोग मर गए हैं, ठीक है 2500 का कत्ल हुआ था 2014 में, 2009 में, 1949 में ऐसे ही भूकंप आया था, 3 लाख लोग मरे थे नेपाल में। सारा न्यूज हमको बता दिया गया, मैं न्यूज देखने गया ही नहीं। क्यों? वो कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज आपके पास आएगा। जैसे कि एक बार आज प्रवचन चल रहा था, एक बार बार एक भक्त ने उठाता फोन, हाँ हरे कृष्णा, हाँ पीछे बैठा हूँ पीछे, हाँ ठीक है जाना, ठीक है ऐसा कर रहा है। महाराज बोलते हैं क्या कर रहे? बोले महाराज बहुत इम्पोर्टेंट कॉल था। बोलते हैं कि लेट इम्पोर्टेंट कॉल कम्स टू यू, स्विच ऑफ योर मोबाइल। स्विच ऑफ कर दिया, जो भी इम्पोर्टेंट सचमुच आपकी जरूरत कहीं है तो आपके पास लोग आएंगे, आप ही का खून किसी को देने की जरूरत है आपको लोग उठा के ले जाएंगे यहाँ से, है ना? इम्पोर्टेंट आप चीज आपके पास आएगी, ऐसा होता है देखा गया। अगर इम्पोर्टेंट था तो यहाँ क्या कर रहे हैं आप? वो चीज इम्पोर्टेंट थी और आपका पता थी तो यहाँ क्या कर रहे हैं? तो वैसे ही अनुभव से सीखना चाहिए, ठीक है? तो आप अर्चना की बता रहा था ना मैं, अर्चना, तो ये अर्चन विधि है, मतलब आप लोगों को आचमन, एटलीस्ट आचमन आना चाहिए। आचमन आएगा तो भगवान की पूजा करेंगे, मुद्राएं होती हैं, मुद्राएं सीखे हैं आप लोगों ने? आठवीं क्लास होता है तो आचमन करना तो सबको कंपलसरी है, क्योंकि हम जितने लोग यहाँ पर रहते हैं कभी कभी जाते हैं, फूल ले लेते हैं, है ना, अगरबत्ती छू लेते हैं, सब छूने के पहले आचमन करना चाहिए। और अगर आप आचमन करना सीख जाते हो तो जल्दी भी करना सीख जाएंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके फास्ट हो जाएगा। तो सबको आचमन करना चाहिए, ठीक है? कौन आएगा आचमन करने? एक व्यक्ति आइए, गंभीर नरसिंह प्रभु आइए। खरी गलती होगी कोई बात, यहाँ पर आप एक बार सही कर लेना, जिंदगी में कभी गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर कम से कम 60 कैमरे लगे हुए हैं। एकदम पंडित जैसे बोलते हैं, घबराहट हो रही क्या क्या बोला? आह्वान करने के बाद हाथ को पहले शुद्ध करना है, पहले चम्मच उठाइए अपने हाथ में डालिए, फिर उस हाथ से लेफ्ट हैंड, अब आप हाथ का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है? और मंत्र थोड़ा पहले बोल लेते थे, है ना? घर से बोल कर आए गुरु मंत्र मंत्र को बोलना चाहिए, जब आप पानी जल डालेंगे जल को देख के बोलना, देखना पड़ेगा, देखिए ऐसे नहीं मंत्र बोल रहे हैं ओम के शिवाय नमः नॉट लाइक दैट, ठीक है? थोड़ा घबराहट होती है यहाँ पर, लेकिन याद रहेगा आपको आचमन डालना है, जब डालते हो उसको देखिए ओम के शिवाय नमः, थोड़ा रुकिए इतना वो जल्दी नहीं है, कहाँ जाना है, तब वो पराठा चढ़ाएगा, ऐसे होता है कभी कभी। हरे कृष्णा श्री प्रभुपाद की। किसी को प्रश्न है?
हाँ,
छोटे बच्चों को
मुझे, मैं छोड़ूंगा नहीं, बदला लेके रहूंगा, तुमने ये किया तो मैं तुम्हें लेके रहूंगा,
नहीं, बदला नहीं, भगवान जज है। जज का काम क्या है, आप भगवान को जज जैसे ट्रीट करोगे तो जज जैसे ट्रीट करेंगे, और भगवान को पिता के जैसे ट्रीट करोगे तो पिता जैसे करेंगे। नहीं, बताते हैं जैसे कि एक स्त्री है, स्त्री को जब पुरुष भुगता है ना तो स्त्री को आनंद आता है। पुरुष बोलेगा कि स्त्री बोलेगी मैं नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति बोले कि नहीं, पुरुष अपनी स्त्री को क्यों भोग रहा है, समझे बात को। पुरुष भोगेगा तो स्त्री को आनंद आता है। आत्मा का स्वभाव है, जब आत्मा को कृष्ण भोगते है ना तो आत्मा को आनंद आता है, समझे। आत्मा का स्वभाव है, आत्मा बन ही ऐसा है। जैसे पेड़ा बोले मुझे खाते क्यों हो, लोग चबाते रहते हो, पेड़ा को खाएंगे नहीं तो क्या करेंगे, पेड़ा बने ही खाने के लिए। आत्मा का स्वजीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, आत्मा का स्वभाव है भगवान की सेवा करना। तो भगवान बोलते हैं कि तुम ये नहीं कर रहे हो, दुखी हो, मैं इसलिए परेशान हूं, तुम अब मेरी सेवा करोगे तो सुखी हो जाओगे, मैं तुम्हें सुखी करने के लिए अपनी सेवा में लगा रहा हूं। ये तो दया है, ये अहंकार नहीं। लोग सोचते हैं कि भगवान का अहंकार अजीब सा है, भगवान सबको अपनी सेवा में लगाना चाहते हैं। ना, भगवान आत्मा राम है, भगवान के पास करोड़ों लक्ष्मियां शरीर निवास करती है, भगवान को कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब आत्मा भगवान की सेवा में लगता है तो आत्मा को ही आनंद आता है, तो उसके बेनिफिट के लिए बोला जाता है। जैसे कि बच्चे को स्कूल भेजा जाता है, कितने करोड़ माँ बाप है, बच्चे को तैयार करके सुबह उठा के स्कूल भेज दिया, बताओ। नहीं, माँ बाप तो अच्छे हैं, स्कूल नहीं भेजेंगे तो मनुष्य कैसे बनेगा, सीखे कैसे। वैसे भगवान बच्चों की सहायता के लिए, भक्तों की सहायता के लिए उसको अपनी सेवा लगाते हैं, उसमें से प्योर बनेगा। सुनार कितना क्रूर है, सोने को आग में डाल दिया, ना उस आग में डालने से तो वो शुद्ध हुआ है। तो भगवान क्या है, शुद्ध है, भगवान क्या है, शुद्ध, और भगवान के संपर्क पाने पर व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। ऐसे लोग क्यों प्रश्न पूछते बता, क्योंकि पढ़ते नहीं है, सारा प्रश्न सेंटिमेंटल लेवल पर होता है, जो उनको अच्छा लगता है वो पूछ लेते हैं। फिलोसफी बोली जाती है शास्त्र को पढ़कर, अपने मन से मनगणित कोई फिलोसफी नहीं होती है, वो कुतर्क है। तर्को ना प्रतिष्ठात बोला गया है, वेद बताया गया तर्क कहीं कोई स्थान नहीं है, कोई स्थिति नहीं है तर्क की। आप कुछ भी तर्क करते रहिए, फालतू के तर्क तो बच्चा भी करता है। अब जाइए सड़क पर किसी व्यक्ति से बहस की, कितना बहस करेगा, नहीं फालतू बातें बोलता रहे, पर बोले आपके जो स्टेटमेंट बोल रहे उसका बेसिस क्या है, उसका कोई बेस नहीं होगा। नहीं, आप बोलते उसका बेसिस होता है शास्त्र। तो फिलोसफी शास्त्रों से आती है, बाकी सब फिलोसफी है, ठीक है। इसलिए शास्त्र पढ़ेंगे तो आप